وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Sadaqallahu maulana al-azim. Buzurgane muhtaram, muazzaz bhaiyo, aaj ki taqreer baghair dane ki mungfali hai. آج کی تقریر بغیر دانے کی مونگ پھلی ہے کیونکہ آپ حضرات کو کوئی بیان سننا نہیں ہے آپ کو تو چاند کا انتظار کرنا ہے ایسی صورت میں جب آدمی کسی ٹاپک کی طرف متوجہ نہ ہو اس کا ٹینشن ادھر نہ ہو تو بات کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا یوز لیس بات ہوتی ہے اس لیے آپ چاند کی طرف سے ذہن ہٹا کر بات کی طرف متوجہ کر دیں تو کچھ بلے پڑے گا کچھ فائدہ ہوگا ورنہ کیا فائدہ ابھی ہمارے قاری صاحب نے جو آیات پاک تلاوت فرمائی ہیں اس میں سے یہ پہلی آیت اس پہلی آیت میں چار باتیں پہلی بات یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت کائنات یونیورسل اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے وہ سب یونیورسل ہے وہ سب کائنات ہے وہ مخلوقات ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے ان کے علاوہ کائنات کے کسی ذرے کا کوئی مالک نہیں الحمدللہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے بندے ہیں اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی اہم بات نہیں ہے ہمارے لیے کوئی اہم بات نہیں ہم سب کا ایمان ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک اللہ ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی اہم بات نہیں ہے مگر حقیقت میں بہت اہم بات ہے ساری گمراہیاں جو انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں یہ تصور کنسپشن خراب ہو جاتا ہے تو ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندے یہاں اکٹھا ہیں جن کا اس حقیقت پر ایمان ہے جو مومن ہیں تو کوئی سوچتا ہوگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہوئی تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں اس لیے کہ ہم آلریڈی اس پر بلیف رکھتے ہیں لیکن انسان غیر مسلم کوئی ہو اور خود مسلمانوں میں بہت ایسے مسلمان ہیں جو اس تصور کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں ان کے یہاں کائنات کا تھوڑا بہت اختیار اللہ کے علاوہ کا بھی ہے آپ میں سے زیادہ تر ہندوستان کے ہیں ہندوستان کے ہندوؤں کا کیا خیال ہے ان کے خیال یہ ہے کہ بارش کا دیوتا فلاں ہوا کا پون ونڈ اس کا دیوتا فلاں دولت لکشمی اس کے دیوتا لکشمی حتیٰ کہ بیماریاں اور بیماری بھی چیچک نکلتی کا چیچک کا دیوتا فلاں ہے اگر تمہیں چیچک ہٹانی تو اس دیوتا کی پوجا کرو چیچک جانتے ہو نا کیا کہتے ہیں چیچک کو کیا کہتے ہیں چکن پاکس لاحول والا قوت اللہ بلدہ نام بھی کیسا رکھا ہے یعنی ایک ایک بیماری کا الگ الگ خدا ہے چیچک چکن پاکس کا اس کا خدا فلاں ہے اگر تمہیں بچے کو چیچک نکل آئی یا گھر میں آئی یا علاقے میں چیچک آئی بچنا ہے تو اس دیوتا کی پوجا کرو گے تو ہی کام چلے گا بھگوان کی بھکتی کرنے سے چیچک نہیں جائے گی بھگوان کو تو وہ بھی مانتے ہیں ہندو نہیں مانتے ہندو بھی مانتے ہیں अल्लाह को कौन है जो नहीं मानता? इंसानों में कोई इंसान नहीं है जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को सब मानते हैं। हिंदू तीन नामों से अल्लाह को जानते हैं और मानते हैं। एक वो अल्लाह को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर के माने हैं खालिक, पैदा करने वाला। वो अल्लाह को ईश्वर मानते हैं, खालिक और पैदा करने वाला मानते हैं। वो ये मानते हैं कि सारा जगत, होल वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्सल अल्लाह का पैदा किया हुआ, ईश्वर का पैदा किया हुआ है। ईश्वर के अलावा किसी को पैदा करने वाला नहीं मानते। एक मक्खी का पर भी कोई और ने नहीं पैदा किया, पूरी कायनात ईश्वर की पैदा की हुई है, ये हर हिंदू मानता है। दूसरी बात ये मानता है कि अल्लाह परमेश्वर हैं, परमेश्वर हैं यानी वो वदूद हैं। अल्लाह ने जो अपनी कायनात पैदा की है उस कायनात से अल्लाह को बहुत लगाव है, प्यार है, लव है, मोहब्बत है, प्रेम। उर्दू फिर हिंदी में प्रेम कहते हैं मोहब्बत को। उस प्रेम और परमेश्वर ये वो एक लफ्ज है, वर उसमें ऐसा लगा जैसे ताकतवर। तो परमेश्वर का मतलब है कि अल्लाह ताला ने, जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, अपनी चीज़ बनाते हैं, तो हर बनाने वाले को, खालिक को, अपनी मखलूक से, अपनी बनाई हुई चीज़ से प्रेम और मोहब्बत होती है। गाँव में आदमी अपना झोंपड़ा बनाता है तो उसको अपने झोंपड़े बनाए हुए झोंपड़े से ताल्लुक और मोहब्बत होती है। कोई महल बनाता है जिसको अपने महल से मोहब्बत होती है। आथर होते हैं, किताबें लिखने वाला, इसने एक नहायत निकम्मी किताब लिखी, चार पैसे की भी नहीं है, मगर ये हर वक्त बगल में दबाए फिरेगा क्योंकि इसने लिखी। तो ये नेचुरली है, फितरी बात है कि हर इंसान को अपनी बनाई हुई चीज से मोहब्बत होती है। तो ये पूरी कायनात जब ईश्वर ने बनाई है तो ईश्वर को इसके साथ मोहब्बत होगी या नहीं होगी? इसलिए वो अल्लाह को परमेश्वर मानते हैं, अल्लाह को इस कायनात के साथ मोहब्बत है। हमारे यहाँ रिवायात में एक नहायत ज़ईफ रिवायत है, हदीसों में एक नहायत ज़ईफ रिवायत है, अल खल्क़ आयालुल्लाह, पूरी मखलूक ये अल्लाह की फैमिली है, अल्लाह के बाल बच्चे हैं। फअहब्बुल खल्क़ इलल्लाह मन काना अहब्ब इला आयालिही, मखलूक में अल्लाह को सबसे प्यारा कौन? वो जो अल्लाह की फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव करे, यानी वो इंसान जो मखलूक के साथ, कोई मखलूक हो, कुत्ता हो, मेंढक हो, चींटी हो, इंसान हो, गधा हो, बिल्ली हो, ये सब अल्लाह का कुंबा है। इस कुंबे के साथ जो अच्छा बर्ताव करेगा वो अल्लाह को ज़्यादा प्यारा है। ये हमारे यहाँ अहादीस में, रिवायतों में एक नहायत ज़ईफ़ रिवायत है। इसे दो बातें निकली, एक बात तो ये निकली कि सारी कायनात अल्लाह का कुंबा है और आदमी को कुंबे से मोहब्बत होती है नहीं, हर शख्स को अपनी फैमिली से मोहब्बत होती है। तो जब सारी कायनात अल्लाह का कुंबा है, क्या मतलब? अल्लाह का कुंबा होने का मतलब ये कि अल्लाह को मोहब्बत है इस कायनात के साथ। अल्लाह ने जो मखलूक पैदा किए हैं उस मखलूक से नफरत नहीं अल्लाह को, अल्लाह को अपनी पैदा की हुई मखलूक से मोहब्बत है। और हमारी फैमिली के साथ कोई अच्छा सलूक करे तो कुदरती तौर पर फैमिली का जो बड़ा है उसकी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। मैं जगह जगह बात देखता हूँ, एक औरत है, उसका छोटा बच्चा है, वो सफ़र कर रही है बस में किसी जगह पर, और उसके नेक्स्ट सीट पर बैठा हुआ एक आदमी उस बच्चे को सब प्यार करता है, तो उस औरत का तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है कि मेरे बच्चे को खिला रहा है, मेरे बच्चे से दिलचस्पी ले रहा है। एक फितरी बात है, नेचुरली बात है। तो इसमें यह कहा गया कि अल्लाह को कौन सा बंदा पसंद है? अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो अल्लाह की फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव करे, जो अल्लाह की फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव करेगा वो बंदा अल्लाह को प्यारा है। तो पहली बात मैं अर्ज कर रहा था कि अल-खल्क अयालुल्लाह, इस जुमले में कहना यह है कि जैसे बड़े को अपनी फैमिली के साथ प्यार होता, मोहब्बत होती है, अल्लाह को भी अपनी पैदा की हुई मखलूक के साथ प्यार और मोहब्बत है। परमेश्वर के यही माना है। वदूद के अरबी में, वदूद के कुरान करीम में अल्लाह की सिफत वदूद आई है, मोहब्बत करने वाली हस्ती। तो हिंदू अल्लाह को वदूद सिफत के साथ मानते हैं। हिंदू अल्लाह की तीसरी सिफत मानते हैं भगवान। भगवान दो लफ्ज है, भग और वान। वान ऐसा लफ्ज है जैसे पहलवान, और भग, भग के माने हैं भक्ति, इबादत, वर्शिप। तो अल्लाह को भगवान मानते हैं यानी माबूद मानते हैं। तो माबूद वही है, भगवान वही है, वर्शिप उसी की है। ये सब कुछ मानने के बावजूद, क्यों? एक फितरी बात है, जिसने पैदा किया, जो अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, तो मखलूक को किसकी चौखट पर सजदा करना चाहिए? फितरी बात है, एक ने पैदा किया, पैदा करके वो मोहब्बत भी कर रहा है, उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी कर रहा है, उसको रोज़ी पहुंचा रहा है, तो मखलूक को उसी के सामने सजदा करना है, किसी और के सामने सजदे का कोई जवाब नहीं। एक फितरी बात है। तो जो ईश्वर मानेगा, परमेश्वर मानेगा, वो लामहला भगवान मानेगा, और वो भगवान मानते हैं। मगर जब अमल का नंबर आता है तो पूरी दुनिया में घूम लो, एक मंदिर भगवान की भक्ति के लिए जमीन पर नहीं। पूरी दुनिया में घूम लो, किसी जगह पर आपको एक मंदिर भी सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए नहीं। भक्ति किसकी है? भक्ति है अल्लाह की मखलूकात की, उन तमाम मखलूकात की जो बंदे हैं, जो अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, उनकी भक्ति। कहीं राम की भक्ति हो रही है, राम का मंदिर है, कहीं हनुमान की भक्ति हो रही है, हनुमान का मंदिर है, कहीं गणपति की भक्ति हो रही है, गणपति का मंदिर है, कहीं ये, कहीं वो, कहीं वो, कहीं वो, पता नहीं कौन कौन कितनी मखलूक है। कहते हैं उनके यहाँ 20 करोड़ खुदा हैं। और हिंदुस्तान में, हम नॉर्थ इंडिया में मैं रहता हूँ, वहाँ मंदिर, मंदिरों में मूर्तियाँ हम रोज़ देखते रहते हैं। साउथ इंडिया में जब जाते हैं हम, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, तो वहाँ भी मंदिर है, उस मंदिरों को भी देखते हैं, तो वहाँ के खुदा सब अलग ही हैं, यहाँ के खुदा सब अलग हैं। बिल्कुल मूर्तियाँ अलग ही हैं, वो खुदा अलग है, ये खुदा अलग है। और इतना फर्क कि नॉर्थ इंडिया वाले राम को पूजते हैं, हनुमान का पुतला जलाते हैं, और साउथ इंडिया वाले रावण को पूजते हैं और वो राम का पुतला जलाते हैं। बहरहाल पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, जब किसी को सर्वे करना हो करो, जहां भी मंदिर है अल्लाह की मखलूक की पूजा करने के लिए है, भगवान की भक्ति के लिए एक मंदिर नहीं है। और भक्ति किसकी होती है? भक्ति होती है या तो खालिक हो, पैदा करने वाला हो, मालिक हो। खालिक और मालिक दोनों चीजें जमा हो जाएगी, वो माबूद है, उसी वो भगवान है, उसकी भक्ति की जाएगी। या खालिक तो नहीं है मगर मालिक है, खालिक तो नहीं है मगर मालिक है, तो अभी उससे उम्मीद बांधनी पड़ती है, डरना पड़ता है। देखो एक कारखाने का मालिक है, वो कारखाने का खालिक भी है और मालिक भी है, तो तमाम सर्वेंट उससे डरेंगे। वो बॉस है, वो नफा भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। नफा क्या पहुंचाएगा? तनख्वाह देता है। नुकसान क्या पहुंचाएगा? शाम को क्या देगा? कल मत आइयो। तो नफा भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। कोई लाए
जी।
क्या लाए? रात भर रोए, एक भी नहीं मरा। ये चक लाए कि चांदनी हुआ, नेगेटिव खबर लाए, पॉजिटिव नहीं लाए कुछ। लिहाजा बात थोड़ी देर में पूरी करते हैं, फिर आप लोग इत्र पढ़े तो शरीफ ले जाए। आप भी बैठो, आप खामा भटकने से क्या फायदा। मैं जल्दी बात पूरी कर दूंगा, मजमून समझो। मालिक खालिक और मालिक हो, दोनों चीजें जमा होंगी वो माबूद है। मैंने मिसाल दी कि एक कारखाना है, उसका मालिक है तो उससे डरते हैं मुलाजिमीन, वो खालिक है, मालिक है, नुकसान भी पहुंचाएगा, नुकसान भी पहुंचाएगा। और अगर मालिक तो खालिक तो नहीं है मगर मालिक है, जैसे कारखाने का मैनेजर, वो खालिक नहीं, कारखाना उसका नहीं है, उस कारखाना किसी का है, मगर वो उसका मालिक तो है, नफा नुकसान पहुंचा सकता है, तो मुलाजिमीन किसी दर्जे में उससे भी डरते हैं। तो अब सोचना ये है कि इस कायनात का खालिक कौन, मालिक कौन। हिंदू भी मानता है कि खालिक अल्लाह है, ईश्वर वही है, उनके अलावा कोई नहीं। झगड़ा सारा पड़ता है यहां आकर के, मालिक वही है या मालिक कोई और भी है, वह झगड़ा सारा यहां आकर पड़ता है। कुरान करीम ये कहता है कि खालिक भी वो है, वह मालिक भी वही है। कायनात के किसी जर्रे का अल्लाह के अलावा कोई मालिक नहीं। वलिल्लाहि मा फिस समावाति वमा फिल अर्द, और अल्लाह ही की मिल्क हैं तमाम वो चीजें जो आसमानों में हैं और तमाम वो चीजें जो जमीन में। अगर ये मिल्कियत का तसव्वुर बिगड़ जाए और आदमी ये समझने लगे कि धन दौलत का मालिक ये है, हेल्थ का मालिक ये है, और बारिश का खुदा ये है, और पवन का, हवा का खुदा ये है, बीमारी का खुदा ये है, तंदुरुस्ती का खुदा ये है, ये तसव्वुरी बदल जाए। या जैसे मुसलमानों में औलिया और अंबिया के बारे में इस तरह के तसव्वुरात पैदा हो गए हैं कि फला वली के हाथ में ये है, फला वली के हाथ में ये है, फला वली के हाथ में ये है, उनकी कब्र पर और मजार पर जाओगे तो ही मुरादें पूरी होंगी। अगर इस तरह का तसव्वुर बिगड़ जाएगा तो फिर सिर्फ अल्लाह माबूद नहीं रहेंगे, समझ लो मेरे भाइयों, फिर सिर्फ अल्लाह माबूद नहीं रहेंगे। और अल्लाह और वो वर्शिप और वो बंदगी जो गैरुल्लाह की है, उसका अल्लाह को, अल्लाह के यहां से उसका क्या एवज मिलेगा? जब तुमने बंदगी गैरुल्लाह की है तो अल्लाह के यहाँ क्या एवज मिलेगा? मोटी सी बात है। और अगर पार्टनरशिप में अल्लाह की इबादत की, उसका भी अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू नहीं। अल्लाह की बंदगी की है, अभी तो मस्जिद में अल्लाह के सामने सजदा कर रहा है, अभी जाकर कब्र पर सजदा कर रहा है, ये पार्टनरशिप की बंदगी अल्लाह के यहाँ एक्सेप्ट नहीं। अल्लाह ताला कयामत के दिन फरमाएंगे, ना अग्न शुरका, मैं तमाम पार्टनरों में सबसे बेनियाज हूं, वो इबादत जो पार्टनरशिप में मेरी की गई है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा, जाओ पार्टनरों के पास, वो सहला देंगे तुम। इसलिए फरमाया वलिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही की मिल्कियत है तमाम वो मखलूकात जो आसमानों में हैं और तमाम वो मखलूकात जो जमीनों में है। मेरे भाइयों, अगर ये एक पहला मजमून, हल्का सा मजमून, अगर ये सही हमारे दिमागों में बैठ जाए तो क्या होगा? वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, अल्लाह के सामने सजदा करना, यू आर थिंकिंग इज वेरी हैवी। वो एक सजदा जो जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है नजात। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है नजात। एक अल्लाह के हो जाओ, उसी के सामने सर टेको, दुनिया के हजार सजदों से तुम्हें नजात मिल जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
InshaAllah, آئندہ کل سے عشاء کی نماز 9:30 پر ہوگی. From tomorrow, Salatul Isha will be at 9:30, inshallah. ہلال کمیٹی کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ نارتھ امریکہ میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا ہے, لہذا انشاءاللہ فرسٹ رمضان ٹیوزڈے کو ہوگی.
حافظ صاحب لوگوں کا کتنے بجے